प्रिय श्रोताओं, कार्यक्रम आजकल की एक अन्य कड़ी लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। मरियम मेहरदादी और मोहम्मद मेदी का सलाम स्वीकार करें।
श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हम हाल ही में मरने वाले पूर्व जानी राष्ट्रपति शिमोन पेरेस के जीवन पर एक नजर डालेंगे। मंगलवार 28 सितंबर को जानी शासन के पूर्व राष्ट्रपति शिमोन पेरेस का 93 साल की आयु में निधन हुआ। मरने से पहले वे कई दिन तक कोमा में रहे। इस समय बेलारूस के भाग विश्नवा नामक शहर में, जो उस समय पोलैंड का एक भाग था, पेरिस का जन्म हुआ था। लेकिन 1934 में वे अपने परिवार के साथ फिलिस्तीन की ओर पलायन कर गए। शिमोन पेरिस 25 साल के थे कि अतिग्रहित फिलिस्तीन में इसराइल नामक अवैध शासन की स्थापना की घोषणा की गई। पेरिस के जीवन पर एक दृष्टि डालने से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि ज़ायोनी शासन के गठन, फिलिस्तीनियों को उनकी मातृभूमि से जबरदस्ती बाहर निकालने, यहूदियों को फिलिस्तीन में लाकर बसाने, अवैध ज़ायोनी कॉलोनियों का निर्माण, वर्ष 1993 में ओस्लो शांति समझौते, वर्ष 1996 में दक्षिणी लेबनान में आक्रोश के गुच्छे या ग्रेव्स ऑफ वथ नामक अभियान, दक्षिणी लेबनान में ही काना शरणार्थी शिविर पर हमले और फिलिस्तीन के पहले और दूसरे इंतेफाजा आंदोलन के शुरू होने में शिमोन पेरेस ने सीधी भूमिका निभाई थी।
पेरेस वर्ष 1947 में अपने राजनीतिक आदर्श डेविड बिन गुरियन के नेतृत्व में काम करने वाले हगाना नामक अर्ध सैनिक आतंकवादी गुट में शामिल हो गए और यही गुट आगे चलकर इसराइल की सेना का मुख्य आधार बना और इसने फिलिस्तीनियों को उनकी मातृभूमि से जबरदस्ती बाहर निकालने और वहां यहूदी पलायनकर्ताओं को लाकर बसाने में अहम भूमिका निभाई। शिमोन पेरेस हगाना के लिए हथियार खरीदने का काम किया करते थे। मई 1948 में इसराइल की स्थापना के बाद इस अवैध शासन के पहले प्रधानमंत्री के रूप में बिन गुरियन ने 24 वर्षीय पेरेस को नौसेना अध्यक्ष के पद पर तैनात किया। 1952 में वे इसराइल के युद्ध मंत्रालय में उप महानिदेशक और फिर 1953 से 1959 तक महानिदेशक के पद पर काम करते रहे। 1959 से 1965 तक वे इसराइल के युद्ध मंत्री का सहायक रहे और 1974 में इसहाक राबिन के मंत्रिमंडल में पेरेस को युद्ध मंत्री बनाया गया। वे 3 साल तक इस पद पर बाकी रहे। 1995 में एक बार फिर वे 1 साल के लिए इसराइल के युद्ध मंत्री बने।
अतिग्रहित फिलिस्तीन में शिमोन पेरेस का पहला राजनीतिक पद इसराइल की संसद नेसेट की सदस्यता था। वे 1959 में सांसद बने और 2007 तक, जब वे इसराइल के राष्ट्रपति बने, हमेशा नेसेट के सदस्य रहे। पेरेस इसराइल में सत्ता के उच्च स्तर तक पहुंचे। राष्ट्रपति बनने से पहले वे ज़ायोनी शासन के 5 मंत्रिमंडलों में शामिल रहे और 2 बार प्रधानमंत्री बने। शिमोन पेरेस वर्ष 2007 में ज़ायोनी शासन के 9वें राष्ट्रपति बने और 7 साल तक ये पद उनके पास रहा। इस आधार पर कहा जा सकता है कि पेरेस ने कुल मिलाकर 15 साल तक मंत्री के रूप में विभिन्न मंत्रालयों और 7 साल ज़ायोनी शासन के राष्ट्रपति के रूप में काम किया। इसी तरह उन्होंने इसराइल के सैन्य परमाणु कार्यक्रम के विकास में भी प्रभावी भूमिका निभाई और ज़ायोनी शासन के परमाणु कार्यक्रम के संस्थापक के नाम से प्रख्यात हुए। शिमोन पेरेस पहले व्यक्ति हैं जो इसराइल के प्रधानमंत्री भी बने और राष्ट्रपति भी।
पेरेस अपने राजनीतिक जीवन में इसराइल के 4 दलों के सदस्य रहे। आरंभ में वे मपाई पार्टी के सदस्य थे, लेकिन 1965 में वे बिन गुरियन के साथ इस दल से अलग हो गए और उन्होंने राफी पार्टी की स्थापना की। 2 ही साल बाद 1967 में उन्होंने मपाई और राफी पार्टियों के गठजोड़ का मार्ग प्रशस्त किया और लेबर पार्टी का गठन किया। 1977 से 1992 तक वे लेबर पार्टी के महासचिव रहे। नेसेट के 17वें चुनाव से पहले वे कादिमा पार्टी से जुड़ गए। वास्तव में उन्होंने एरियल शेरोन, एहुद ओलमर्ट और जीपी लिवनी जैसे लोगों के साथ मिलकर कादिमा पार्टी का गठन किया था।
इसराइल के सभी अपराधों में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शिमोन पेरेज शामिल रहे। अर्धसैनिक आतंकवादी संगठन हगाना के मुख्य सदस्य के रूप में उन्होंने अतिग्रहित फिलिस्तीन का भौगोलिक ढांचा बदलने के लिए फिलिस्तीनियों को इस इलाके से भगाने और पलायनकर्ता यहूदियों को बसाने तथा यहूदी कॉलोनियों के निर्माण में सीधी भूमिका निभाई। उनकी निर्दयता का चरम बिंदु 1996 के अप्रैल महीने में देखने को मिला, जब उन्होंने ज़ामी शासन के प्रधानमंत्री के रूप में लेबनान के प्रतिरोध को समाप्त करने के उद्देश्य से इस देश पर हमले का आदेश दिया। इस युद्ध में इसराइल के सैनिकों ने पेरिस के आदेश पर दक्षिणी लेबनान के काना शनाते शिविर पर हमला कर दिया, जिसमें 250 से अधिक लोग शहीद व घायल हुए, जिनमें बड़ी संख्या बच्चों और महिलाओं की थी। तभी से शिमोन पेरेस को काना के जल्लाद के नाम से पहचाना जाने लगा।
शिमोन पेरेस के राष्ट्रपति रहते हुए ज़ायोनी शासन ने दो युद्ध किए, पहला वर्ष 2008 में गजा के विरुद्ध और दूसरा 2012 में लेबनान के इस्लामी प्रतिरोध के खिलाफ। इन दोनों युद्धों में हजारों लोग हताहत और घायल हुए। वर्ष 2010 में गजा पट्टी के लोगों के लिए मानवता प्रेमी सहायता लेकर जाने वाले तुर्की के समुद्री जहाज पर हमला और दसियों सहायता कर्मियों की हत्या भी इसराइल में शिमोन पेरेस के राष्ट्रपति काल में ज़ायोनी शासन द्वारा किए गए अपराधों में से एक है। इसके अलावा पेरेस ने इसराइल के कुछ अपराधों में अप्रत्यक्ष भूमिका भी अदा की। वे वर्ष 1982 में लेबनान पर इसराइल के सैन्य अतिक्रमण के मुख्य समर्थक थे, जिसमें 20,000 से अधिक आम नागरिक मारे गए। इसी तरह वर्ष 1987 और 2000 में पहले और दूसरे इंतफाजा आंदोलन को कड़ाई से कुचलने के मुख्य समर्थकों में से एक पेरेस थे। पहले इंतफाजा आंदोलन में लगभग 3,000 फिलिस्तीनी शहीद हुए और हजारों अन्य घायल हुए, जबकि दूसरे इंतफाजा आंदोलन में भी 3,000 से अधिक लोग हताहत और कई हजार घायल हुए। शिमोन पेरेस वर्ष 2006 से जारी गजा के परिवेष्टन के भी मुख्य समर्थकों में से थे और ये परिवेष्टन उनके राष्ट्रपति काल के साथ वर्षों में निरंतर जारी रहा और इस समय भी जारी है।
शिमोन पेरेस द्वारा किए गए असंख्य अपराधों के बावजूद संसार के कुछ राजनेता और संचार माध्यम उन्हें शांति प्रेमी के रूप में याद करते हैं। इसका मुख्य कारण वर्ष 1993 में ओस्लो में होने वाले शांति सम्मेलन में उनका भाग लेना था। इस सम्मेलन से जिसका उद्देश्य अरब देशों द्वारा इसराइल को औपचारिक रूप से मान्यता देना था, फिलिस्तीनियों के विरुद्ध ज़ायोनियों के अपराध में कोई कमी नहीं आई, बल्कि इसराइल के साथ अरब देशों के औपचारिक व अनौपचारिक कूटनीतिक संबंधों की बहाली का मार्ग प्रशस्त हो गया। वस्तुतः यह सम्मेलन मध्यपुर में शांति स्थापना के लिए आयोजित ही नहीं हुआ था, बल्कि इसका लक्ष्य ज़ायोनी शासन के हितों को पूरा करना था। ओस्लो सम्मेलन में तीन लोगों ने मुख्य भूमिका निभाई थी। इसराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री इसहाक रबिन, तत्कालीन विदेश मंत्री शिमोन पेरेस और पीएलओ के प्रमुख यासिर अराफात। इस सम्मेलन में इन तीनों की भूमिका के दृष्टिगत ही उन्हें शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बहरहाल अब ओस्लो के शांति समझौते के तीनों संस्थापकों में से कोई भी जीवित नहीं है।
शिमोन पेरेस की मौत के बाद एक विषय जिसने मीडिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, कुछ अरब नेताओं विशेषकर फिलिस्तीनी प्रशासन के प्रमुख महमूद अब्बास की प्रतिक्रिया थी। उन्होंने कहा कि पेरेस केवल इसराइल के आध्यात्मिक पिता नहीं थे, बल्कि वे फिलिस्तीनी राष्ट्र के भी नेता थे। महमूद अब्बास ने पेरेस के अंतिम संस्कार में भी भाग लिया। यह ऐसी स्थिति में है कि पूर्व ज़ायोनी राष्ट्रपति की मौत पर ब्रिटेन के प्रख्यात पत्रकार रॉबर्ट फिस्क ने कहा कि शिमोन पेरेस का नाम मुझे दक्षिणी लेबनान के काना गांव में ज़ायोनियों के अपराध की याद दिलाता है। उन्होंने समाचार पत्र इंडिपेंडेंट में लिखा कि यद्यपि पश्चिमी संचार माध्यम पेरेस को एक शांति प्रेमी व्यक्ति के रूप में याद करते हैं, लेकिन मुझे उनके नाम से अपराध और रक्तपात की याद आती है। मध्य पूर्व के राजनीतिक मामलों के विशेषज्ञ और प्रख्यात टीकाकार रॉबर्ट फिस्क ने लिखा है कि पश्चिमी मीडिया के प्रचार के विपरीत शिमोन पेरेस शांति प्रेमी नहीं थे। उनका कहना है कि पेरेस की मौत की खबर सुनकर मुझे खून, आग और हथियारों की याद आ गई। मैंने उनके कामों के परिणामों को निकट से देखा था, टुकड़े टुकड़े हो चुके बच्चों को देखा था।